एक सुनसान सड़क पर थोड़ी बहुत चहल पहल थी। रोड पर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले चल रहे थे। लड़की ने घुटनों से कुछ ऊपर तक का आयरी कलर का फ्रॉक पहना था। उसके बाल सुनहरे भूरे रंग के थे जो उसके कंधे से नीचे तक झूल रहे थे। वो एली थे। मैंने इतना एन्जॉय कभी नहीं किया। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है जिसे मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाली, एली ने हंसकर कहा और फिर आर्या के होठों पर हल्का सा किस कर दिया। हाँ, सही कहा, ये दिन मैं भी अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। सोचा नहीं था लंदन के बाहर भी इतना एन्जॉय किया जा सकता है, वो भी इंडिया में। आर्या एली के साथ मुंबई में था। वो अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए वहां आया था तो साथ में उसे भी ले आया था। तुम्हें पता है मैं कभी लंदन से बाहर नहीं गई। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आ पाई, यहाँ की अच्छी अच्छी जगहें घूम पाई और आज का दिन सच में खास था। मुस्कुराते हुए एली ने अपना हाथ आर्या के आगे किया। उसके हाथ में डायमंड रिंग थी। कितनी बार दिखाओगी बेबी, ये मैंने ही तुम्हें पहनाई है। तुमने ही पहनाई है, पर यकीन नहीं होता कि अब हम एंगेज्ड हैं। मन कर रहा है जोर से चिल्लाऊं और इन हवाओं को बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। तो फिर बता दो, किसने रोका है, आर्या ने हंसकर किया। उसके कहते ही एली जोर से चिल्लाई, आई लव यू आर्य सिंह ओब्रॉय, अब तो हमें बस मौत ही जुदा कर सकती है। फिर उसने चेहरे के भाव गंभीर किए और परेशान स्वर में बोली, आई होप तुम्हारी फैमिली को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, वैसे दादू सब संभाल लेंगे, मुझे उन पर पूरा यकीन है। इतने अच्छे दिन पर उनकी बातें करके मूड खराब मत करो, आर्या ने जवाब दिया। चलो अब यहाँ से चलते हैं, मुझे भूख लग रही है, हम काफ़ी देर से यहाँ वॉक कर रहे हैं, एंड आई एम रियली टायर्ड। एली ने उसकी बात पर हामी भरी और उसके कमर में हाथ डाल लिया। दोनों एक दूसरे के साथ रोड पर चल रहे थे मानो वो किसी हसीन सफर पर निकल रहे हों। दोनों अपने ही धुन में खोए थे तभी अचानक किसी ने पीछे से आर्या के सिर पर किसी जोरदार चीज से वार किया। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। वो वार काफी तेज था। आर्या चिल्लाकर नीचे गिर गया। एली ने पीछे मुड़कर देखा तो एक मास्क वाला आदमी था। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पैसे या कुछ चाहिए तो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, प्लीज हमें जाने दो। उसे लगा वो कोई चोर है। आर्या जैसे तैसे करके खड़ा होने की कोशिश कर रहा था तभी उसने उसके सिर पर एक और जोर से मारा। वो कराह कर नीचे गिर पड़ा। आर्या को बचाने के लिए एली ने अपना पूरा जोर लगाकर उसके पेट पर किक मारी। वो उससे कुछ कदमों की दूरी पर गिर पड़ा। एली आर्या के पास आकर उसे संभालने लगी। चलो यहाँ से चलते हैं, वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी तभी उस मास्क मैन ने रोड पर गिरी बॉटल को उठाकर एली के सिर पर दे मारा। बॉटल टूट चुकी थी और उसके सिर से खून आ रहा था। एली आर्या के ऊपर गिरी थी। आर्या उठो, प्लीज लेट अस गो, वो रोते हुए बोली। आर्या की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था तभी उसने एली की चीख सुनी। उस आदमी ने उसके कंधे में टूटी हुई कांच की बॉटल घोंप दी। उसके खून से आर्या का सफ़ेद शर्ट लाल होने लगा। उसने एली को आर्या से दूर किया और उसे मारने के लिए गन लोड की। तभी एली जैसे तैसे करके खड़ी हुई। वो आर्या को शूट करने वाला था लेकिन एली उसके बीच में आ गई। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों का ध्यान उस तरफ केंद्रित हुआ और वो आदमी वहां से भाग गया। एली जमीन पर जख्मी हालत में आर्या का हाथ पकड़कर पड़ी थी। उसकी आंखें आखिर बार भी आर्या को देख रही थीं। आर्या को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। एली ने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। एली, आर्या चिल्लाकर बेड से उठा। वो हॉस्पिटल में था। ये एली से जुड़ी वो आखिरी कड़वी याद थी जो उसे सपने के रूप में दिखाई दे रही थी। आर्या के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ध्वनि अंदर दौड़कर आई। सब ठीक है आर्या, वो उसे संभालने के लिए उसका हाथ सहलाने लगी। आर्या की आंख में आंसू थे। उसने ध्वनि की तरफ देखा। मैंने फिर से वही सब देखा, वही सब महसूस किया। मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा। वो सब गुजर गया है। याद है हम लुसियाना हॉल गए थे, वहां शिवी थी। तुमने मुझे उसे ढूंढने के लिए कहा था। तुम उससे मिलने के लिए बहाने बना रहे थे। ध्वनि उसे अच्छी यादें याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उसने कहा था ये दिन हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मैं भूलना चाहता हूँ पर नहीं भूल पा रहा। आर्या बार बार उससे एली के बारे में बात कर रहा था। ध्वनि उसे अपनी तरफ से संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे गले लगाया और उसके बालों को सहलाने लगी। ध्वनि ने शिवी को हॉस्पिटल आने से मना किया था लेकिन उसने ईशान से बात करते हॉस्पिटल के बारे में पूछ लिया था। ध्वनि जिया के साथ आर्या का हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल पहुंची। ईशान वार्ड के बाहर बेंच पर बैठा था। उसे होश आ गया है, उसने शिवी के उसके पास आते ही कहा। लेकिन उसे हुआ क्या था जो वो बेहोश हो गया? शिवी अभी भी आर्या की हालत पर हैरान थी। मुझे नहीं पता, ध्वनि अंदर है और उसने किसी को भी अंदर भेजने से मना किया है, ईशान ने बताया। शिवी और जिया भी वहीं उसके पास बैठ गई। क्या मैं एक बार अंदर जाकर उससे मिल सकती हूँ? शिवी को आर्या की फिक्र हो रही थी। ध्वनि ने मना किया है और डॉक्टर ने भी, शायद उसका बीपी लो हो गया होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, रात काफी हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। मेरे पास नील का कॉल आया था,
ईशान ने कहा। शिवी ने वहां से जाने से मना कर दिया। मैं उससे मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी, शिवी ने जवाब दिया और खिड़की की तरफ आ गई। अंदर का कुछ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर आर्या बिस्तर पर लेटा था और ध्वनि उसके पास बैठी हुई थी। ध्वनि की नजर बाहर की तरफ पड़ी तो उसने शिवी को देखा। उसने आर्या से कहा, शिवी बाहर है और वो तेरे लिए परेशान हो रही है। मैं उसे तब तक अंदर आने के लिए नहीं कह सकती जब तक तू उससे ठीक से बात नहीं करेगा। तू चाहे मुझसे कितना भी छुपा ले, पर तेरी आंखों में दिखता है कि कुछ मुलाकातों में उसने तुम्हारा दिल जीत लिया है। मैंने कभी तुम्हारे मुंह से किसी लड़की का जिक्र तक नहीं सुना, और तुम जब से उससे मिले हो उसके पीछे हो, चाहे वो गुस्से में हो, नफरत में हो, बदला लेने में या किसी भी चीज में। अभी उसे इस बारे में मत बताना। मुझे उससे मिलना है, आर्या ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, मैं उसे अंदर भेज देती हूँ, पर अभी तुम उससे एली की बात मत करना। हाँ, उससे कभी कुछ छुपाना भी मत, पर अभी अपने रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ने दो। अभी तो तुम दोनों की दोस्ती तक नहीं हुई, तो इतनी पर्सनल बात उससे शेयर करना ठीक नहीं होगा। आर्या को सब समझाने के बाद ध्वनि बाहर आ गई। वो नहीं चाहती थी कि शिवी का सच जाने बिना आर्या आगे बढ़े। वो बाहर आते ही शिवी के पास जाकर बोली, तुम उससे मिल सकती हो, वो ऐसे हर किसी के बारे में नहीं सोचता। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो सच सच बताकर ही आगे बढ़ना। पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम ही शिवनंदिनी अय्यर हो जो उसके ऑफिस में काम कर रही हो सकता है वो तुमसे गुस्सा होगा, चिल्लाएगा या कुछ भी कहे, पर तुम्हें उसे टाइम देना होगा। बातों बातों में ध्वनि ने उसके दिल की बात जाननी चाही। आप गलत समझ रही हैं ध्वनि मैम, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे चोट लगी थी तो वो मेरे साथ था, मेरे सामने उसकी तबीयत खराब हुई थी, मैं बस तभी उससे मिलने आई। शिवी ने अपने दिल में आर्या के लिए कोई भी फीलिंग होने की बात से साफ इनकार कर दिया। उसके अंदर जाने के बाद ईशान ध्वनि के पास आया और धीमी आवाज में कहा, शायद तुम और आर्या दोनों ही शिवी को गलत समझ रहे हो।
तो वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, ध्वनि ने गुस्से में पूछा। शिवी के इनकार करने पर उसे बुरा लग रहा था। वो नहीं चाहती थी आर्या का दिल फिर से दुखे। चीजें कॉम्प्लिकेटेड हों उससे पहले शिवी नहीं, तुम आर्या को बताओगी कि शिवी उसके ऑफिस में काम कर रही है, तुमने उससे झूठ बोला है तो ठीक भी तुम ही करोगी, ईशान ने गंभीर होकर कहा। ध्वनि ने हाँ में सिर हिलाया। एक झूठ की वजह से सब कुछ बिगड़ रहा था। उसकी नींव भी कहीं न कहीं ध्वनि ने ही रखी थी, और अब सब ठीक करने की जिम्मेदारी भी उस पर थी। शिवी आर्या के पास अंदर गई। आर्या के चेहरे पर गहरी उदासी के भाव थे, फिर भी उसने शिवी को देखकर हल्की मुस्कुराहट दी। वो उसके पास लगी कुर्सी पर बैठ गई। काफी देर तक दोनों के बीच एक अजीब चुप्पी छाई रही। तुम तो बहुत डेलिकेट निकले, इतनी भीड़ के अंदर बेहोश हो गए, क्या अमीर लोग इतने नाजुक होते हैं, शिवी ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा। वो जानती थी आर्या का मुंह खुलवाने के लिए उसे क्या कहना था। मैं कोई नाजुक नहीं हूँ, आर्या ने सख्त आवाज में कहा। हाँ हाँ, बस बस रहने दो, भीड़ देखकर बेहोश होने वाले लड़के, उस दिन मेरी छोटी सी चोट के हल्का सा खून क्या आया, तुम तो बुरी तरह घबरा गए। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला होगा। पता है हमारे इंडिया में ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, राजा बेटा, शिवी की बात सुनकर आर्या ने मुंह बनाकर कहा। तुम मेरा हालचाल लेने आई हो या मुझे और बीमार करने, किसी बीमार और परेशान इंसान से मिलने जाते हैं तब ऐसी बातें कौन करता है। तुम और परेशान, मिस्टर तुम खुद कभी परेशान नहीं होते, बल्कि अपने आसपास के लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाते रहते हो, कभी अपनी जिद के चलते होटल खरीद लेते हो तो कभी ऑफिस में, शिवी बोलते हुए रुक गई। इससे पहले कि तुम्हारे सवाल जवाब शुरू हो तुम्हें बता दूं, ध्वनि मैम ने बताया कि तुम ऑफिस में भी सबको परेशान करके रखते हो, रात काफी हो गई है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए परेशान हो रहा होगा, तुम मुझसे कल भी मिल सकती थी, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आर्या ने बात को बदलने के लिए कहा। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। उसने आर्या के हाथ पर हल्के से अपने हाथ को रखकर कहा, अपना ख्याल रखना, तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, अगर आधी रात को तुम्हें भूख लगे तब कॉल करके रेसिपी भी पूछ सकते हो, पर हाँ ऐसे बेहोश होने की इजाज़त नहीं है, बोलते हुए उसकी आंखें भर आईं। वो आर्या के लिए बहुत परेशान हो रही थी, पर वो नहीं चाहती थी कि आर्या उसकी आंखों में आंसू देखे, इसलिए वो जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ गई। पीछे एक फ्लावर बुके पड़ा था, शिवी ने जल्दी से उसे उठाया और आर्या को देकर कहा, एक बार के लिए इससे काम चला लो, और अगली बार बीमार हुआ तो क्या लेकर आओगी। श, ऐसी बातें नहीं कहते हैं, तुम चिल्लाते हुए और दूसरों पर गुस्सा करते हुए ही अच्छे लगते हो, हॉस्पिटल बेड पर नहीं, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। उसे बाय बोलने के बाद शिवी बाहर आ गई। वो काफी कम वक्त के लिए आर्या के पास रुकी थी, पर उतना समय आर्या के लिए काफी था। वो एली के बारे में सोचना छोड़कर शिवी के बारे में सोच रहा था। पागल लड़की, उसने बड़बड़ाकर कहा। शिवी बाहर आई तो ध्वनि ईशान के साथ बैठी थी। शिवी ने जो भी कहा उसके बाद से वो उससे नाराज थी। कल ऑफिस में मिलते हैं, शिवी ने ध्वनि से कहा। उसके बाद वो वहां से जाने लगी। रुको, ध्वनि ने जवाब में कहा, कल ऑफिस में तुम खुद को छुपाने के लिए कुछ भी नहीं पहन कर आओगी, ये मेरी गलती है जो मैंने पहले दिन तुम्हारे सच को सामने नहीं जाने दिया, नाउ आई वॉन्ट अब सच उसके सामने आ जाए, मैं कल उसे सब सच बता दूंगी। ध्वनि की बातें सुनकर शिवी के दिल की धड़कन बढ़ गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे आर्या सब जानने के बाद उससे नफरत करने लगेगा,
अपने गुस्से में इतनी भी जल्दबाजी मत करो कि चीजें बिगड़ जाएं ध्वनि। आर्या की तबीयत खराब है, उसे थोड़ा टाइम दो, रिकवर होने पर सब सच बता देना, ईशान ने उसे डांट कर कहा। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? जिया ने पूछा। उन दोनों को इस तरह घुल मिलकर बातें करता देख जिया और ध्वनि हैरान थी। हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। शिवी तुम यहाँ से जाओ, और हाँ, जैसे तुम हमेशा ऑफिस जाती हो वैसे ही कल जाओगी। ईशान ने शिवी और जिया को वहां से भेज दिया। शिवी दिल ही दिल में आर्या को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान थी। इस परेशानी की वजह वो भी नहीं समझ पा रही थी, पर उसने जिया को अपने घर भेज दिया। वो रोड पर पागलों की तरह दौड़ रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में आर्या के लिए फिक्र।